نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 19ویں پارے کے خلاصے میں سے دوسرا حصہ دیکھیں گے پارہ نمبر 19 اور روپ نمبر 2 سورۃ شعرا سے شروع ہوتا ہے سورت شعرا نام سے ہی دکھتا ہے شاعر کی جمع شعرا مکی سورت ہے اور مکہ کا وہی دور جس کو درمیانہ دور کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراضات شدید تھے لوگ آپ کو شاعر کہتے کبھی مجنو کہتے کبھی دیوانہ کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے سب سے پہلے سورت طٰہٰ نازل ہوئی پھر سورت واقعہ اس کے بعد سورت شعرا اور سورت طٰہٰ جو ہے وہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہو چکی تھی تو اس پوری صورت کے اندر مکہ والوں کی اس بات پر کہ کبھی نبی پر ایک اعتراض کبھی دوسرا کبھی نشانیوں کا مطالبہ کرتے کبھی آپ کو شاعر کہتے آپ کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے آپ کے اس مشن کو ہلکا جانتے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو نشانیاں تمہیں ملنی ہیں سات قوموں کے واقعات عبرت کی نشانی بنا کر اس صورت میں پیش کیے گئے کہ واقعی اگر نشانی دیکھتے ہو تو قوم عاد میں دیکھ لو سمود میں دیکھ لو اور اس طرح کی بعد والی قوموں میں دیکھ لو کہ جب انہوں نے نہ مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا دوسری طرف اس صورت میں اللہ کے نبی کا ایک سچے داعی دین ہونے کا کردار پیش کیا گیا غم دکھ اتنا تھا اس بات کا کہ لوگ دین کو نہیں سمجھتے اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کے بعد ان کا انجام برا ہے ہم سب اس صورت کو پڑھتے ہوئے بھی انشاءاللہ اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا آج ہمارے اپنے بھی دل میں اسی قسم کے جذبات ہیں اور کہیں ہمارا رویہ اس قوم کی طرح کا تو نہیں کہ جس کو دین کے جتنے فوائد بتائے جائیں وہ اتنے ہی عذر پیش کرتا جائے آئیے سورت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں پہلی آیت ہی کو دیکھ لیجئے حروف مقطعات کے بعد کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں یہ کوئی غیر واضح کتاب نہیں جس چیز کی طرف بلاتی ہے بڑی دلیل کے ساتھ پکارتی ہے اس کی بیان اس کا معنی اس کا مفہوم اس کے اندر پیش کردہ حقائق واقعات سب بالکل صاف ستھرے ہیں اور سمجھ آتا ہے اس کا ایک ایک فقرہ اللہ کا کلام ہے اور ایک ایک آیت اللہ کی نشانی ہے ذرا سی عقل سے کوئی کام کرے تو اس کو اس کتاب کی بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے لیکن مکہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے انسان کی سمجھ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو لیکن اگر انسان اپنے دماغ میں کوئی اور بات سوچ رہا ہو تو اس وقت آسان سے آسان بات بھی اس کو نہیں سمجھ آتی اس صورت میں انبیاء کا مختصر ذکر بھی ہے اور ان کی دعوت کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے قوموں کا جواب بھی ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ کسی قوم کو بلانے کے لیے جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے درد مندی پیدا کرتے ہیں اپنے دل میں کیا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس آیت پہ رک کے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے ہائی لائٹ کر لیجئے اور سب سے پہلے تو ہم اپنا جائزہ لیں گے کیا مجھے بھی یہ غم لگا ہوا ہے کیا واقعی میں بھی اپنی جان کا روگ بنائے بیٹھی ہوں اس بات کو کہ کس طریقے سے لوگوں کی بے دینی کو دور کرنا ہے یاد رکھیے کسی کا غم پالنے کے لیے پہلے خود کو غم زدہ کرنا پڑتا ہے انسان کا دل غم کھانے کا عادی ہے جب ہم دنیا کا غم لگائے رکھتے ہیں تو آخرت کا غم پیچھے پڑ جاتا ہے آپ اس آخرت کے غم کو سائڈ پہ کر دیں پھر دیکھیے کتنے غموں کے جراثیم آپ کو چمٹتے ہیں آپ آ کے بیٹھتے ہیں اس سے پہلے آپ کے ذہنوں میں کتنے غم ہوتے ہیں لیکن جو ہی کتاب کھلتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے تو ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا غم لگانا ہے ایک بہت بڑا غم جس کے بعد دنیا کے سب غم چھوٹے لگیں گے یا پھر چھوٹے چھوٹے غموں کو لے کر اس بڑی آخرت کو پیچھے کرنا ہے بالکل اس باپ کی طرح کہ جنگل میں اپنے بچوں کے ساتھ جائے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے بچاتا پھرے غم یہ لگا کہ کہیں یہ چونٹی اس کو نہ چمٹ جائے لیکن اگر اتنے میں اس باغ میں ایک شیر آ جائے تو باپ کو یہ سب چونٹیاں بھول جائیں گی اور شیر یاد رہے گا تو شیر آخرت کا غم ہے हम अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने खानदानों के लिए अगर ये गम लगा लेंगे, इंशाल्लाह इसके बाद दूसरी ही चीज़ें हमारे से पीछे हो जाएंगी। फिर दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें ज़हन में रखिएगा कि हम इस गम को बहाना नहीं बना सकते। कुछ लोग गम के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहते नहीं हम क्या करें, बेदीनी इतनी है, बुराई इतनी है। नहीं, दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि अभी खुद भी हिदायत पर पूरे नहीं आए। जब अपनी हिदायत अभी अधूरी होती है ना, तो दूसरों की फिक्र नहीं होती। जितनी अपनी हिदायत बढ़ती जाती है, उतनी दूसरों की हिदायत की फिक्र है। असहाबे कहफ के किस्से में अल्लाह ताला ने कहा था, बस जिद ना हम खुदा, कि हिदायत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो खुद डूब रहा हो वो दूसरों को नहीं बचा सकता, दूसरों को बचाने के लिए अपना सहारा नहीं छोड़ता। जो दूसरों की हिदायत की फिक्र रखते हैं वो मसलियतों में नहीं पड़ते, वो पैगाम को नहीं बदलते। और जो दूसरों की हिदायत की फिक्र करता है, अल्लाह खुद बहुत उसको जमा देता है, उसकी हिदायत को बढ़ाता है, जिसको अपनी जबान में हम कहते हैं ना, ठुक जाता है। तो दूसरों की हिदायत के लिए उतना हाथ बढ़ाना है कि अपना सहारा ना छूटे अल्लाह से। बाज़ लोग सोशल वर्क के नाम पे अपने दीन से बेनियाज हो चुके होते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आसमान से आवाज आ जाए कि झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा दिल ठुक चुका है इस बात पर कि झूठ बोलना बुरी बात है। तो हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों को भी यही तड़प लगा दे। सूरत कहफ की आयत 6 में भी अल्लाह ने नबी की यही कैफियत पेश की, सूरत फातिर की आयत 8 में भी यही कहा, फला तस्हब नफ्स कालैहिम हसरात। अल्लाह हमें भी ये गम लगा दे। फरमाया, हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें इसके आगे झुक जाएं। यानी क्या मतलब, हमारे पास कोई निशानियों की कमी है? हम तो इनकी अकल का इम्तिहान ले रहे हैं, निशानियां तो हर तरफ मौजूद हैं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नई नसीहत भी आती है, ये इससे मुंह मोड़ लेते हैं। यानी शुक्र करें कि निशानी नहीं आ रही इनके कहने पे, क्योंकि इन्होंने उससे भी मुंह ही मोड़ना था। अब के ये झुटला चुके हैं, अनकरीब इनको इस चीज की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी, जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। किसका मजाक उड़ाते थे? दीन का, नबियों का। और वक्त के साथ जब अल्लाह की मदद आई, दीन वाले और नबी बच गए, तो उस वक्त इनको समझ आ गई कि हम कितने नुकसान में रहे और दूसरे जो हैं वो फायदे में रहे। आज भी आप देखिए कि दुनिया में लोग दीन के काम करने वालों को नीचे समझते हैं, लेकिन एक वक्त वो आने वाला है, और बहुत करीब वो वक्त है, कि असल कामयाब लोग वही होंगे दुनिया में भी जिनका दीन सच्चा होगा। आज मुल्कों के नाते से तो अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि जिन लोगों ने कुफर का निज़ाम और बातिल और सूद का निज़ाम रखा, वो दिन ब दिन अपनी मौत आप मर रहे हैं। और इस्लाम के कवानीन को नाफिज करना रखना अब लोगों की मजबूरी बनती जा रही है। अब ऐसी खबरें मीडिया से सुनने को और देखने को मिल रही हैं कि फलां जगह मुल्क में अब वो अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए सूद को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। किसी मुल्क में चोरों के हाथ काटने या उनको सजाएं देने की बात हो रही है। तो इंसानियत पलट पलट के उसी चीज की तरफ आ रही है जिसकी तरफ अल्लाह सुबहाना तआला ने बुलाया था, और जिनका आज ये मजाक उड़ा रहे हैं, कल उन्हीं को ये मानने लगेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं, अब अलम यरू इलल अर्दी, और क्या कभी उन्होंने जमीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी कसीर मकदार में हर तरह की उमदा नबातात इसमें पैदा की हैं। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। ये जुमला आपको बार बार इस सूरत में दिखेगा, एक तरफ अल्लाह के जबरदस्त होने का तذکرہ और दूसरी तरफ रहीम होने का तذکرہ। क्यों? इसलिए कि पिछली कौमों को उनकी हालत के ऊपर अल्लाह ने पकड़ा, ये उसके अल अजीज होने की अलामत थी, गलबे की अलामत थी, अल्लाह ताला की कुदरत की अलामत थी। और नबियों की मदद की, चाहे ईमान वाले गिनती के थे लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया, ये अल्लाह ताला के उनके ऊपर रहम की अलामत थी। इसके बाद अब कौमों के किस्से शुरू होते। सबसे पहले किस्सा है मूसा अलैहिस्सलाम। वइस नादा रब्बुक मूसा अन इतिल कौम अज़्ज़ालिमीन। इन्हें इस वक्त का किस्सा सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा, जालिम कौम के पास जा, फिरौन की कौम के पास, क्या वो डरते नहीं हैं? यहाँ नोट कर लीजिए, क्या वो डरते नहीं हैं? इस बात को, नबियों की दावत का जो खुलासा होता है वो लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना होता है। जब तक खौफ नहीं होगा, लोग शरीयत को नहीं मानेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे। खौफ इंसान से बहुत बड़े काम कराता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई में काम किया और चल पड़े। काला रब्बी निया खाफ युकज्जिबून, उसने कहा है मेरे रब मुझे खौफ है कि वो मुझको झुटला देंगे। मेरा सीना घुटता है और मेरी जुबान नहीं चलती। आप हारून अलैहिस्सलाम की तरफ रिसालत भेजिए और मुझ पर इनके हाँ एक जुर्म का इल्जाम भी है, इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं वो मुझे कत्ल न कर दें। यहाँ दो तीन बातें। पहली बात ये देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो जिम्मेदारी दी गई, लग रहा है कि वो करना नहीं चाह रहे। तो यहाँ से क्या पता चला कि जरूरी नहीं कि जो जिम्मेदारी मिले वो पसंद भी आए। बास लोगों को जिस काम का शौक होता है लेकिन उनके अंदर उसकी सलाहियत नहीं होती। तब क्या किया जाए, उनके शौक की कीमत पे दूसरों को भेंट चढ़ा दिया जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। और अगर मेरी कमी दूर नहीं हो रही पिछले कई साल से, तो फिर फिक्र की जरूरत है कि शायद मैं अपने उस हाल पे मुतमईन हूँ। आप देखिए कि हम में से हर इंसान जो है वो जिंदा है तब तक वो चेंज हो सकता है। आदतों को, बोलने के अंदाज को, चलने फिरने को, आहिस्ता बोलने को, तेज बोलने को, अपने आप के अंदर मिजाज में कुछ ना कुछ तब्दीली हम कर सकते हैं। तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से इस बात की दुआ की कि अल्लाह ताला मैं करना तो चाहता हूँ काम, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काम मैं अच्छा नहीं करूंगा। दूसरी बात देखिए कि हजरत मूसा ने हारून को रसूल बनाने की दावत दी। इससे क्या पता चलता है? दिल का खुलापन। अल्लाह की बाण पर राजी थे लेकिन अपने उस काम को आसान दर्जे पे करना चाहते थे, इसलिए हेल्पर मांगा। इससे क्या पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी स्किल्स पर कोई मान नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको एक जिम्मेदारी दी तो दिल को साफ रखते हुए उन्होंने अपने ही एक भाई को साथ बुला लिया। अमूमन ऐसे वक्तों में लोग नेमत को छुपाने लगते हैं, खूबी हो ना हो इस पे बड़े खुश होते हैं और मुबारकें देने लेने लगते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी मिली। रिसेंटली मैं एक किसी जगह ट्रिप पे थी, तो जाहिर है कि जब सारे साथी पहले से कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उनको चैनलाइज किया तो फिर टाइटल भी दिए कि आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप सारी चीज़ों के जिम्मेदार हैं। तो एक बहुत माशाल्लाह धीमी और बहुत समझदार सिस्टर जो थी, हमने उनको कहा कि इस शहर बल्कि इस कंट्री की इंचार्ज आप हैं और आपको ये कहा जाएगा। अच्छा, उनकी तो हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा इस पे फील कर रही थी कि जिम्मेदारी है वो है। लेकिन बाद में मैंने एक दो लोगों को उनको मुबारक देते हुए देखा और उनकी मुबारक के अंदाज से मुझे ऐसा लगा कि उनको इस वक्त बड़ी हसरत आ रही है कि हम क्यों नहीं बने, ये क्यों बन गई कोऑर्डिनेटर। लेकिन असल में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मुझे तो और कोई नाम नहीं याद होगा वहां का सिवाय उसके इंचार्ज के जिन्होंने उसकी रिपोर्ट देनी है। तो जिम्मेदारियां खुशी के मौके कब बनते हैं? जब हम इनको अदा कर सके। नेकी के मौके के साथ साथ खौफ भी आएंगे, मगर इनकार नहीं करना, बस अल्लाह का नाम लेके चल पड़िए। अल्लाह ताला खुद ब खुद सिखाने भी लगता है और इंसान अपने काम से काम रखे, बाकी काम सारे अल्लाह की तरफ होते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह सुबहान तआला का जवाब सुन लीजिए, फरमाया हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ। मतलब यह है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात है कि ये नहीं हो सकता कि हम आपको नबूवत ना दें और सिर्फ हारून को दें, यानी आप भी नबी रहेंगे वो भी रहेंगे। फजहबा भी आयाती ना, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और हम तुम्हारे साथ कुछ सुनते रहेंगे। बड़ी प्यारी आयत है, इन्ना माकुम मुस्तमेउन, यानी तुम अकेले नहीं हो, तुम जहां भी हो असमी और बसीर तुम्हें देख भी रहे, तुम्हें सुन भी रहे, इसलिए फिक्र ना करना। और गोल दे दिया, हदफ दे दिया क्या, कि फिरौन के पास जाओ और उससे कहो हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। देखिए काम करने का तरीका सिखा दिया, जाते ही अपना मकसद पेश करो और तारुफ क्या है, रब्बिल आलमीन का भेजा हुआ। अपने नाम या अपनी किसी जमात को बड़ा नहीं बल्कि अल्लाह के नाम को बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। अन अरसिल माना बनी इसराइल, इससे क्या पता चलता है कि हमारा मकसद सिर्फ ये, हम तेरी हुकूमत नहीं लेना चाहते, हम तुम्हारे मुल्क पे कोई कब्जा नहीं करने आए, बस हम अपने कैदियों को आजाद करवाने के लिए आए हैं। अब देखिए फिरौन का छिछोरपन, खाली बर्तन ज्यादा बोलता है। अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया था लेकिन देखिए कि अपनी नेकी को कैसे जाया करता है। काल अलम नुरब्बी कफीना वलीदन, फिरौन ने कहा क्या हमने तुझे अपने यहाँ बच्चा सा ना पाला था। एहसान जतलाना काफिरों का तरीकेकार है, यानी उसने ताना दे दिया मूसा को कि तू हमारे टुकड़ों पे पला है, तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और इसके बाद कर गया जो कुछ तू कर गया। इशारा है कत्ल की तरफ किप्ती के। तू बड़ा ही एहसान फरामोश आदमी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। उस वक्त मैंने वो काम नादानिस्तगी में कर दिया था, यानी मैं उस वक्त जानता नहीं था। वो नादानिस्तगी से मुराद यह है कि ये कत्ले खता था, मैंने कोई इरादे से कत्ल नहीं किया था, बस ये हो गया था। फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया। इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया। हुक्म से मुराद यहाँ नबूवत, क्योंकि मूसा को नबूवत फिर उसके बाद मिली। ये भी देखिए अल्लाह की शान है। आज हम गुनाह करते हुए दीन की तरफ जब आते हैं तो कहते हैं अब हम क्या खैर ले सकते हैं, हमने तो इतने गुनाह किए हैं, लेकिन हमने भी कत्ल तक तो नहीं किया होगा। अल्लाह अंबिया कराम को नबूवत से पहले बाज दफा ऐसे हालात से दो चार कर देता था जिसमें बहुत बड़े बड़े गुनाह होते थे, मसलन यहाँ कत्ल है, लेकिन अल्लाह फिर अपनी रहमत कर देता है। तो कभी अपनी या दूसरों की हिदायत से मायूस ना हो। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए खैर के फैसले रखे हो। बाज दफा कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसके बाद इतनी नदामत और शर्मिंदगी होती है कि उसके बाद अल्लाह उससे बड़ी नेमत इंसान को अता कर देता है। और यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की साफ गोई भी दिखती है, कोई डरे नहीं, कोई झुके नहीं, और ना ये कहा हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा, हाँ भाई मैं भाग गया था, मुझे पता था तुम जालिम हो तो मेरी बात नहीं सुनोगे। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी, कुव्वत दे दी और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया। रहा तेरा जो तूने मुझ पर एहसान जतलाया। तो इसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। फिरौन ने कहा और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? देखिए तकब्बुर का अंदाज है। और मूसा का कॉन्फिडेंस देखिएगा। मूसा ने जवाब दिया आसमानों और जमीन का रब और इन सब चीजों का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से कहा सुनते हो? मूसा ने कहा तुम्हारा रब भी और इन आबाओ अजदाद का रब भी जो गुजर चुका ना। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं घबरा रहे बल्कि उसकी हर बात का साफ जवाब दे रहे हैं। यहां से पता चलता है कि एक सच्चा मुसलमान जो होता है ये कॉन्फिडेंट होता है। दुनिया के किसी फोरम में भी भेज दिया जाए वो अपनी बात के ऊपर कायम रहता है और उसके ऊपर उस माहौल का कोई सहर नहीं होता। फिरौन ने हाजरीन से कहा तुम्हारे ये रसूल साहेब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। हम अपने ऊपर ले, आप किसी को दर्स देने जाएं बड़े जोश और जज्बे के साथ, पता चले आगे से लोग कहते हैं आप तो पागल हो गई हैं या आप तो बेवकूफ हो गई हैं, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। शायद वो दिन हमारा आखिरी दर्स होगा। हम उसके बाद कहेंगे नहीं जी नहीं, आज के बाद मेरे से ये बेइज्जती नहीं होती। तो याद रखिए अपनी जात के लिए काम करने वाले तो ऐसी बातों पर पलट आते हैं और अल्लाह के लिए करने वाले ऐसी बातों पर जम जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात किसी की सुनी, अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि तुम्हें ना पता चले अगर कि हक किधर है, क्योंकि दीन के नाम पे बहुत कुछ हो रहा होता है। अब इंसान को फिक्र होती है या फिर उसको ये होता है कि जो मुझे बुला रहा है वो हक पे है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद ना भी पता चले ना कि हक किधर है तो तीरों का रुख देख लो, जिधर तीर लोगों के गिर रहे हैं वहीं हक होगा। यानी जिसको लोग बुरा कहें, जहां लोग एकदम भाग जाएं, एकदम पीछे पड़ जाएं, प्रोपेगंडे शुरू हो जाएं, लोग उसके खिलाफ बातें शुरू करें, हक वही होगा। क्योंकि आम बंदे को लोग बुरा नहीं कहते, क्योंकि जब भी हक आता है ना मुआशरे के रस्मों रिवाज और तौर तरीकों पे कुछ ना कुछ चोट तो पड़ती है। यही चोट फिरौन के निजाम पे पड़ने वाली थी। कहने लगा ये तो पागल होते हैं। قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मशरिक और मगरिब और जो कुछ इनके दरमियान है सबका रब, अगर आप लोग कुछ अकल रखते हैं। फिरौन ने कहा अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी इन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं, थ्रेट कर रहे, टॉर्चर सेल्स में डाल दूंगा। मूसा ने कहा अगरचे मैं ले आऊं तेरे सामने एक खुली निशानी। फिरौन ने कहा अच्छा तो ले अगर तू सच्चा है। यानी मूसा बिल्कुल नहीं घबरा रहे। आप देखिए ये है वो लीडरशिप क्वालिटी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मूसा को चुना। हारून अलैहिस्सलाम हो सकता है इतने कॉन्फिडेंट ना होते इस वक्त और घबरा जाते, डर जाते। तो यहां से पता चलता है कि लीडरशिप क्वालिटीज जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं दीन का काम करने के लिए। एक माँ को घर का निजाम चलाने के लिए भी अच्छी लीडर होना चाहिए, वरना बच्चे तो माओं को वैसे ही इधर उधर लगा के बातों में सच्चे भी हो जाते हैं और काम भी गलत करके आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये एक एतमाद पैदा किया था। कहने लगे कुछ लाऊं? उसने कहा ठीक है ले आओ। खैर अब हुआ क्या? قال فأتِ به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين। इसकी जुबान से ये बात निकलते ही मूसा ने अपना आसा फेंका और यकायक वो एक सरी हसदहा था, कोबरा, बड़ा सांप। फिर इसने अपना हाथ बगल से खींचा और अंडर आर्म से यानी, और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। ये थे वो दो बुनियादी मोजजे जो इब्तदाए नबूवत में मूसा को मिले। पहले देखिए मोजजे को जिसमें ऐसा सांप बना, इसमें क्या है? तरहीब, डराना, वॉर्न करना, खौफ दिलाना, और हाथ का चमकना یہ ہے ترغیب، رغبت دلانا، یہی تبلیغ کا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے ختم کر دو، اور یہ بھی نہیں کہ جھوٹی لوریاں دے کے، تسلیاں دے کے ان کو جنت کی سیریں کراتے جو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ فرعون اپنے ارد گرد والے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے، اور ہر ایک سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایک روز وقت مقرر پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، اور ان لوگوں سے کہا گیا، کیا تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب ہیں رہے۔ یعنی موسیٰ کے کہنے پہ فرعون نے وہ کام کر دیا جو موسیٰ کے بس کی بات نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، پوری کوشش بھی کرتے تو دین کا یہ پیغام ایسے آرام سے نہیں لوگوں تک پہنچنا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کی ایک حدیث جہاں سچ ثابت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ فاسقوں سے وہ کام لے لیتا ہے جو کہ وہ نیک لوگوں سے نہیں لیتا۔ فرعون نے اپنا سارا میڈیا جمع کیا، گورنمنٹ کا بندہ تو تھا ہی، اس نے لوگوں کو یہ سوچ کے جمع کیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو ہارتا دیکھیں گے اور اس کے دین سے توبہ کر لیں گے، لیکن کام کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ اور یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم کسی بندے سے بڑی نفرت رکھتے ہیں، نفرت سے مراد یہ کہ اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ بڑا ماڈرن ہے، یہ فلموں میں کام کرتا ہے، یہ ایسا ویسا، یہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ایک بندی بعض دفعہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے۔ بعض دفعہ وہ آپ کو گورنمنٹ تک لے جاتے ہیں، کہیں آپ کو ایسے میڈیا پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ کا کام پھر بہت آگے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی لوگوں کی خیر سے محروم نہیں ہونا۔ کوئی شخص اپنے گھر میں کتنا ہی برا ہے، جب وہ آپ کو کہے کہ میں آپ کے دین کا معاون بننا چاہتا ہوں، بسم اللہ کریں، شروع کیجئے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا اخلاق بڑا میٹھا ہوگا، جب ہم لوگوں کو تانے نہیں دیں گے اور لوگ ہمارے پاس آتے ہوئے تھریٹ نہیں فیل کریں گے کہ آ گئے ہم، بس اب ہمیں تو یہ بہت ساری باتیں سنائیں گے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو تھا وہ سامنے ہوا۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے۔ یہاں سے دیکھیے کفر اور مال کی محبت، اور ساتھ تیسری چیز جادو بھی ہے، تینوں ہی برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی میرے سی ایس بن جاؤ گے، میرے پرسنل سیکرٹریز بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ یہ موسیٰ کا کانفیڈنس ہے، یقین تھا نا کہ میں حق پہ ہوں۔ تو ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے پھینک لیا تو یہ ہوگا، میں نے پھینک لیا تو یہ ہوگا، کہا تم پہل کر لو۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ یہ فرعون کے اقبال والا جو لفظ ہے، یہ قسم کا نعرہ تھا، بے عزتی فرعون۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، جے فرعون، جے مشرکانہ قسم کا یہ ایک نعرہ تھا۔ انہوں نے فرعون کا نام لیا کیونکہ فرعون خود کو رب کہتا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ اب دیکھیں اپنی ساتھیوں پہ شک کرنے لگا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کے دلوں میں یہ سب کچھ آ گیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، دن کے شروع کے وقت میں وہ جہنمی تھے اور چاشت کے وقت وہ جنتی بن چکے تھے۔ اصل یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا دل ہراؤ، نیکی کا کوئی موقع ہمارے سامنے آئے اور ہمارا دل کھل جائے، ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ جب بہت سوچ میں پڑ جاتا ہے نا انسان کسی نیکی کے موقع پہ، تو عموماً اس کو نہیں کر پڑتا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں چل پڑے، اور خود نہیں گرے، اندر سے کسی قوت نے گرایا۔ یہ ہے ایمان کی وہ طاقت جو ایک انسان کو واقعی اللہ کے آگے جھکا دیتی ہے۔ دن کے شروع میں جادوگر اور دن کے آخر میں ولی اللہ بن گئے، یہ سڈن چینج ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا نقطہ نوٹ کریں، آپ کو فائدہ دے گا کہ عموماً تو چینج آہستہ آہستہ آتی ہے، قرآن کے سفر کے ساتھ ساتھ انسان کا اندر بدلتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، फिर रसूल से मोहब्बत बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाजें ठीक होती हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा चेंज बड़ी सडन होती है, कोई एक हादसा हो जाता है ज़िंदगी में, आप देखते हो उसके बाद फ़ौरन लड़की चेंज हो जाती है, एकदम उसको अल्लाह से मोहब्बत हो गई, तो ये इसकी अलामत है। ऐसी सडन चेंज भी अच्छी होती है। बाज़ दफ़ा हम सोचते ही रहते हैं, कोई अपना ऐसा काम सोचिए जो आप चाहते हैं कि मैं छोड़ूं, कोई आदत कोई तरीका, लेकिन आप देखें पिछले साल भी आप सोच रहे थे, उससे एक साल पहले भी सोच रहे थे, उससे 2 साल पहले भी सोच रहे थे, और आज तक आप सोच में पड़े हैं। और कोई ऐसा काम भी सोचिए जिस बंदे ने काम सोचा फौरन कर लिया, तो कभी कभी कर लेना पड़ता है। बिल्कुल इस तरह फील हो रहा है कि कोई गहरा पानी का ऐसे हौज हो सामने या तालाब है, तो अब इंसान ने उसको पार करना है, खड़े रहेंगे ना, जाऊं के ना जाऊं, कूदूं के ना कूदूं, गुजरूं के ना गुजरूं, खड़े ही रहेंगे। और अगर एकदम अल्लाह का नाम लेके आप फौरन जाके क्लाइंब करते हैं, तो आप दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इतनी जुरत अता फरमाए। मूसा का एक मिशन पूरा हुआ, लिहाजा वौहैना इला मूसा नस्रिय बिइबादी इन्नकुम मुत्तबाउन, हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। यानी अब बिल्कुल आखिरी मरहलों में है मूसा का पहला मिशन, और वो क्या था कि बनी इसराइल को आजाद कराना। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, आज के दौर में उनको टेररिस्ट कह देते, कल कुछ और थे। फिरौन के ख्याल में ये कौन लोग थे, वइन्नहुम लना लगाइज़ून, और इन्होंने हमको बहुत नाराज किया है। अपने लफ्ज़ों में इसका तर्जमा देखें तो क्या, कि ये हमें बड़ा गुस्सा दिला रहे हैं, ये हमें चिड़ चढ़ा रहे हैं, और हम एक ऐसी जमात है जिसका शेवा हर वक्त चुकन्ना रहना है। यानी हम तो बहुत ज्यादा अलर्ट पीपल है, हमारी तो CID बहुत तेज है, ये कुछ भी करते हैं हमें पता चल जाता है, इनकी ईमेल्स हमें दिखती हैं, इनके फोन कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। ये फिरौन का फखर था कि हम तो बहुत ज्यादा जनाब अप टू डेटेड लोग हैं, और ये चंद एक मुट्ठी भर लोग जो शर पसंद है, हम इनसे निपट लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं देखो हुआ क्या, इतनी दिल को हिलाने लिए आते हैं ना, कि वखरजना हुम मिन जन्नातिन व उयून व कुनूजिन व मकामिन करीम, इसी तरह हम इन्हें इनके बागों और चश्मों और खजानों और इनकी बेहतरीन क़यामगाहों से निकाल लाए। वो तो निकले थे मूसा और उसकी कौम का पीछा करने, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये हमारी मौत की पुकार है। आज का जितना खुदा फरामोश निज़ाम है, उसके साथ यही कुछ हो रहा है। वो जितना इस्लाम के पीछे हाथ लेके दौड़ता है, अल्लाह उतना उनको उनकी अपनी नेमतों से महरूम करता जा रहा है। और जब निकले तो हुआ क्या, ये तो हुआ इनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन सब चीज़ों का वारिस कर दिया। ये है तिलकल या मनुदा विलुहा बैनन्नास, कैसे अल्लाह दिन रात बदल देता है। सुबह होते ये लोग उनके ताकुब में चल पड़े, जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथ ही चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा हरगिज़ नहीं, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरे साथ तो मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। इसको हाईलाइट कर ले, एक अच्छा लीडर क्या है, मुश्किल से मुश्किल हालात में लोगों का मोरल बुलंद करता है, हिम्मत नहीं तोड़ता, खुद भी ऐसी मायूस बातें नहीं करने लग जाता, हाँ वाकई कोई आता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, चलो फिर छुट्टियां ही दे देते हैं, नहीं मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रहनुमाई देगा। फाउहैना इला मूसा ने द्रिब बियसाकल बहर, मूसा ने कहा हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के जरिए से हुक्म दिया कि मारो अपना असा समंदर पर, यकायक समंदर फट गया और इसका हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। इस जगह हम दूसरे गिरोह को भी करीब ले आए, कौन सा मुराद है, फिरौन का गिरोह। मूसा और इन सब लोगों को जो इसके साथ थे हमने बचा लिया, और दूसरों को गर्क कर दिया। एक ही चीज कुछ की खैर का जरिया बनी और कुछ की तबाही का, इससे क्या पता चला कि नेमत या जहमत या आजमाइश एक ही चीज है, अल्लाह के हुक्म की बात है। सिर्फ खाना आप खाते हैं आपके लिए नेमत बन जाता है, वही खाना दूसरा खाता है उसका पेट खराब हो जाता है, उसके लिए वो आजमाइश और जहमत बन जाता है, तो असल फिर बात अल्लाह ही की जात की है। अल्लाह ताला कहते हैं ये सब तुमने सुन तो लिया, क्यों सुना, इसमें से किस्से निशानियां लो, इन नफी जालिकल आया, इस वाक्य में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। जबरदस्त किसके मामले में हुआ, इधर फिरौन और उसके साथियों के, और रहीम किन के लिए हुआ, बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम की के लिए। बिल्कुल। अब यहाँ आप देखिए कि मूसा का किस्सा ऐसे आया ना कि जैसे हम उसके साथ साथ चल रहे थे। ये भी कुरान का एक हुसन है कि कहानी सुनाते हुए बाज दफा बिल्कुल इंसान अपने आप को उसी का हिस्सा महसूस करता है, और ये बेहतरीन स्टाइल होता है, और कहानी के बीच में रुकने का दिल भी नहीं करता। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और नबी की कहानी, और वो कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में जो सबक था मक्का वालों के लिए वो एज अ कौम था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में एक सबक जो आएगा एक लीडर और सरदार के नाते से आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लम दोनों ही तरह से उस दौर में आजमाए जा रहे थे, लिहाजा इस किस्से में क्या नसीहत है, आइए देखते हैं। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहिम, और इन इब्राहिम का किस्सा सुनाओ जब किसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो। देखिए क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो, यानी उनको बहुत छोटा सोच रहे हैं, ये क्या लकड़ी की चीज है, यानी उनकी बिल्कुल कोई वक्त हजरत इब्राहिम की नजर में नहीं दिख रही। उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा यानी खिदमत में हम लगे रहते हैं। इसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या तुम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया। आज भी ये जवाब होता है ना भाई लोगों, ये जो रस्में करते उसका कोई फायदा है? ये जो खाने खिलाते पिलाते उसका कोई फायदा नहीं, असल में बाप दादा के वक्त से होता रहा है। और देखिए कौमों को अपनी जहालत का खुद पता होता है, इसलिए कह रहे हैं दलील के मैदान में हार गए हैं, लेकिन वो इस तरह से ये बातें करना चाहते हैं कि जिससे अपने इस काम की कोई ना कोई दलील दे सके। इस पर इब्राहिम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोल कर इन चीजों को देखा कि जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन है सिवाय एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है। देखिए अल्लाह की अब सिफात, और इन आयतों पे मुफस्सरीन अल अदब फिल्ला यानी अल्लाह के मामले में अदब की मिसालें देते हैं कि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज कितना खूबसूरत है, अल्लाह की तारीफें कर रहे और अपनी कमजोरियों और अपनी खामियों को देख रहे। अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया वही मेरा रहनुमा है, जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और सबसे बड़ी बात है वह इज़ा मरित तो फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे वही शिफा देता है। इसको हाईलाइट करें, बीमार मैं खुद होता हूँ, कोई गलत खा लेता होगा चीज, कोई और गुना होगा जिसके बदले में अल्लाह बीमार करता है, लेकिन ये नहीं कहा फिर मैं सेहत जाब होता हूँ, वो सेहत जाब करता है। ये भी तो कहा जा सकता था ना कि ये वही है जो मुझे बीमार करता है और फिर मैं खुद ही अपनी अकल से सेहत जाब हो जाता हूँ। तो यहाँ से अदब और मैनर दिखता है कि नबी अल्लाह ताला के मामले में कितनी खूबसूरत तरीके से बात करते हैं। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वो जो मुझे मौत देगा फिर दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोजे जजा में वो मेरी खता माफ फरमा देगा। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली हुक्मं वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजअल्ली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नति नईम वाग्फिर ली अबी इन्नहु काना मिनद्दाल्लीन वला तुख्ज़िनी यौमा युबअसून। हाईलाइट करके इस दुआ को याद करें, बड़ी प्यारी दुआ है, याद ना भी होगी तो देख के भी पढ़ें, अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। इस एक दुआ में क्या कुछ इंसान अल्लाह से मांग लेता है, क्या मेरे रब मुझे हुक्म अता फरमा, हुक्म से मराद यहाँ हिकमत है, हम अल्लाह से हिकमत मांगेंगे, जिंदगी के मामलात अच्छे चलाने की समझ बूझ दे और मुझको सालेहों के साथ मिला दे, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर, यानी लोग मुझे बाद में बुरे नामों से ना याद करें, और मुझे जन्नत नाइम के वारिसों में शामिल फरमा, और मेरे बाप को मुआफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है। हम अपने तौर पे इस दुआ को कैसे मांगे, जैसे अगर हमें पता चलता है कि हमारे बाप दादा में या हमारे आगे बड़े जो थे उनमें कोई बुराई ऐसी कमजोरियां थी, यानी कुछ ऐसे काम करते थे दीन के नाम पे जो मसनून नहीं है, तो ये दुआ किया करे कि अल्लाह उनको नहीं पता था, वो भोले लोग थे, तो उनके वो गुनाहों को माफ कर दे, और मुझे उस दिन रुसवा न करके जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि ना माल कोई फायदा देगा ना औलाद, सिवाय इसके कि कोई शख्स कलबे सलीम लिए हुए अल्लाह के हजूर हाजिर हो। ये भी बड़ी प्यारी बात है, इल्ला मनत अल्लाह बि कलबिन सलीम, अल्लाह की मोहब्बत में चूर दिल, अल्लाह की इताअत में चूर दिल, और अल्लाह के खौफ में चूर दिल। कलबे सलीम तड़पने वाला दिल होता है, जिसके दिल में लोगों का भी दर्द होता है और अपनी भी खैर मानता है, अल्लाह से शदीद प्यार करता है, अल्लाह के हुक्म के आगे किसी दूसरे को नहीं लाता, सलीम अरबी डिक्शनरी में उस शख्स को कहते हैं जिसे सांप ने डस लिया हो। मुस्तर, बेचैन। कैसे मुस्तर होता है वो? इस तरह की ईमान वाला तड़पता है। पर अल्लाह का बाख़िन नफ्सा का वाली कैफियत होती तब है जब दिल कल्बे सलीम में बदल जाए, और दिल को कल्बे सलीम में बदलने के लिए इसको बचाना पड़ता है, इसको सलामत रखना पड़ता है। किससे? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की बेकार चीज़ों से, गुनाहों से, गीबत से। इस दिल में फिर बुराइयां नहीं रहती, इस दिल में लोगों के लिए बदगुमानियां नहीं आती। जितना दिल सलामत होता जाएगा, आप देखेंगे उतनी खैर आती जाएगी। और एक सच्चा दाई दीन कल्बे सलीम के बगैर दीन का काम नहीं कर सकता, जिसमें से कुफर और शिर्क भी निकल जाए और सब कुछ निकल जाए। आप देखिए कि माल और औलाद तो अल्लाह ने दी है ना, जब तक हमारा दिल कल्बे सलीम नहीं होगा हम अपनी इन नेमतों से फायदा नहीं उठा सकते। करोड़पति शख्स भी हो ना, लेकिन दिल सलामत नहीं है तो उसका माल उसको खुशी नहीं देगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कल्बे सलीम दे। वउज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, इस रोज जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी और दोजख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी। और इनसे पूछा जाएगा, अब कहाँ हैं वो जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इबलीस के लश्कर सब के सब इसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। हाँ, ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे, खुदा की कसम हम तो सरीह गुमराही में मुबतला थे जबकि तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे। अब क्या फायदा? बड़े बड़े लीडर्स के पीछे लग के आग में पहुंच गए और वहां जाके अब उनको कोसने देंगे कि तुम्हारी वजह से हम इस गलत जगह पे पहुंच गए। और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला। अब ना हमारा कोई सिफारशी है और ना कोई जिगरी दोस्त। काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हो। क्या फायदा उस हसरत का? इसलिए देखिए, कभी भी किसी के पीछे लगे ना तो जरूर देख लें किसके पीछे लगे हुए। एक दफा एक गाड़ी थी तो उसके पीछे ऐसे किसी मन चले का एक स्टिकर था कि डोंट फॉलो मी आई एम लॉस्ट, कि मेरे पीछे ना चलना मैं बहकाऊ हूँ। तो उसने तो एक फन के नाम पे लिखा होगा ना, लेकिन जिंदगी में ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग लोगों के पीछे लग जाते हैं और उनको नहीं पता। आज दुनिया में जो जिस लीडर के पीछे है, कल उस लीडर वाला अंजाम उसका भी होना है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अच्छा लीडर चुनना और अच्छा साथी चुनना ये इंसान की बहुत बड़ी जरूरत है। अदरवाइज वही बात है कि हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। फिरौनियों के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हों। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। एक और नबी, आप देख रहे हैं कि सूरत में अंबिया के किस्से तरतीब से नहीं आ रहे। कज्जबत कौम नूह मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई नूह ने इनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। बस तुम अल्लाह से डरो और बेखटके मेरी इताअत करो। इन्होंने जवाब दिया कि हम तुझे मान लें, हालांकि तेरी पैरवी रजील तरीन लोगों ने इख्तियार की है। नूह ने कहा, मैं क्या जानू कि इनके अमल कैसे हैं, इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है। काश तुम कुछ शऊर से काम लो। मेरा ये काम नहीं कि जो ईमान लाए मैं इनको धुतकार दूं, मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बे कर देने वाला आदमी हूँ। उन्होंने कहा, नूह अगर तू बाज ना आया तो भिटकारे हुए लोगों में शामिल हो जाएगा। काला रब्बी इन्ना कौमी कज़्ज़बून, नूह ने दुआ की है, मेरे रब मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया। अब मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ इनको निजात दे। आखिरकार हमने इसको और इसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया और इसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और हकीकत यह कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। अल्लाह ने हजरत नूह के किस्से से ये बता दिया कि मेजॉरिटी इज नॉट द अथॉरिटी। बहुत सारे लोग भी गलत काम करें तो वो काम ठीक नहीं हो जाता। और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब नहीं दी, लेकिन सिर्फ बात और पैगाम को ही उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। पता क्या चला कि रसूल की इताअत असल में अल्लाह की इताअत है। दुआ कीजिए कि इस पढ़ने पढ़ाने से हमें अल्लाह अपनी और अपने रसूल की इताअत की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे रुकेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, استغفرك واتوب اليك.